भगवान नाम का जप, भगवान का ध्यान, सत्संग और दुखी आदमी की सहायता, इन सिद्धांतों में किसी का मतभेद नहीं है। सभी सिद्धांतों में ये बात आती है। गौ गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद का नाम, इन पांचों की कृपा से शीघ्र हुए कल्याण। सेवा करने में पशुओं में तो गौ है, सेवन करने में गंगा है, ग्रंथों में गीता है और नाम में गोविंद का नाम, भगवान का नाम है, कल्याण हो जाएगा। इतने मात्र से कल्याण हो जाएगा। जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिनगी आग की परी पुराने घास। सुमिरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामु। अपतु अजामिलु गजु गिन काउ, भये मुकति हरि नाम प्रभाव। हनुमान जी की तो बात ही क्या है, अजामिल और गणिका की मुक्ति हो गई भगवान के नाम उच्चारण मात्र से। अपिचेत सुदुराचारु भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य है सम्यक व्यवसित होई से। दुराचारी व्यक्ति भी मेरा भजन करता है तो वो संति मानना चाहिए। जबकि गीता में बड़ी महिमा है, जप करें, यज्ञानाम जप यज्ञ। इसमें जप यज्ञ मैं खुद हूं और यज्ञ तो साधन है, जप यज्ञ मैं खुद हूं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन, यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमांगति। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि तस्य वाचक प्रणव तज्जपस तदर्थ भावनम। भगवान को कहने वाला भगवान का नाम है और नाम का जो अर्थ है उसका चिंतन करते रहे। सारे शास्त्रों में, महाभारत में, मनुस्मृति आदि में ये बात आई है कि ब्राह्मण और कुछ न करे पर भगवान नाम जब से उसे सिद्धि प्राप्त होती है। उपनिषदों में जगह जगह नाम की महिमा आती है, वेद और पुराणों में आती है। रामायण में तो बड़ी बात कह दी कि राम से बढ़कर राम का नाम है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, रामन सकई नाम गुण गाई। हरेर नाम है, हरेर नाम है, हरेर नाम ही केवलम, कली नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कली नी कलौ, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरऊ पारा। मनु जी ने भी यही बताया है कि वाचिक से 10 गुना उपांशु। उपांशु माने वाचिक, माने वाणी से राम 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 जैसे अभी बोल रहे थे, इससे 10 गुना ज्यादा क्या है उपांशु। पास वाले को भी सुनाई न दे उपांशु, और उपांशु से भी मानसिक 1000 गुना। ये तो वाचिक से 10 गुना उपांशु और उपांशु से 1000 गुना लाभ देने वाला मानसिक जप है। गीता में पहला अध्याय तो भूमिका है और दूसरे अध्याय से 18वें अध्याय तक इसका वर्णन है। बीच में उपासना कांड में तो मुख्यता से वर्णन है कि रात दिन भजन करो, मां मनुस्मर। केशव केशव कुकिए ना कुकिए असार, रात दिवस के कूकते कबहु न सुने पुकार। असार संसार के लिए रो रो कर न रो कर भगवान के लिए खूब रोना चाहिए। केवल भजन के प्रताप से कल्याण हो सकता है, अंतःकरण शुद्ध होकर कल्याण होगा। जो मुक्ति चाहते हैं उसे भगवान मुक्ति देते हैं, ज्ञान चाहते हैं उसे ज्ञान देते हैं। तेषाम सतत युक्ताना तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत। ज्ञान भी भगवान की कृपा से अपने आप होता है। राम नाम मणि दीप धर्म जी देहरी द्वार, जी रूपी देहली पर राम राम रूपी दीपक रख दो तो तुलसी भीतर बाहर जो चाहे सी उजियार। उसको भीतर में ज्ञान का प्रकाश और बाहर का व्यवहार राग द्वेष से रहित होगा। बाहर का प्रकाश क्या है? हमारे व्यवहार में झूठ कपट आता है ये नहीं रहेगा। अंदर में ज्ञान की दीप्ति रहेगी, इसलिए भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, मैं सांप के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं। भगवान का भजन सारे उपदेशों का सार है। अतः असार संसार से वृत्तियों को हटा करके भगवान के नाम में लगाओ। चाहे ओम का उच्चारण करो, चाहे राम का उच्चारण करो, चाहे कृष्ण का उच्चारण करो, सब परमात्मा के वाचक हैं। अतः मनुष्य को सारा जीवन भगवान के भजन ध्यान में ही बिताना चाहिए। चार चीजें प्रधान है, एक तो सेवा, एक संयम, एक साधना और एक सत्संग। सेवा, गुरुजनों की सेवा करो, माता पिता की, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, सदाचारी विद्वानों की सेवा करो, दुखियों की सेवा करो। सेवा करने से बहुत जल्दी अंतःकरण निर्मल होता है। जिसमें दीन दुखी की सेवा करने पर तो बहुत जल्दी ही अंदर का मैल साफ होता है। एक संयम रखो, अंतःकरण और बाह्य करण अर्थात मन बुद्धि का और इंद्रियों का संयम करो। एक एक इंद्रिय ही विद्वान को डुबो देती है, इसलिए प्रत्येक इंद्रिय का संयमन करो। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, ये यत्न करने वाले विद्वान पुरुष को भी इंद्रियां मत डालती है, इसलिए इन इंद्रियों पर बलपूर्वक नियंत्रण रखो। तानि सर्वाणि संयम्य, सब इंद्रियों का संयमन करो। जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। आजकल इंद्रियों को तो भोगों में लगाते हैं, मन को भगवान में लगाना चाहते हैं, फिर कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, भगवान में लगता नहीं है। मन से पहले इंद्रियों को तो विषयों से रोका कि नहीं, उधर ध्यान ही नहीं है। इसलिए इंद्रियों को विषयों से रोका जाए और फिर मन से भगवान का चिंतन किया जाए। यत्न करते हुए भी इंद्रियां मन को हर लेती है, और जो यत्न करते ही नहीं उनकी क्या दशा होती होगी। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते, विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों के साथ में मन जिसके साथ हो जाता है, तदस्य हरति प्रज्ञा, वो उसका मन बुद्धि हरी लेती है, बुद्धि भी उधर ही चल पड़ती है। अतः इंद्रियों को वश में करो, फिर मन वश में होगा। तीसरी बात साधन की है। ये कलयुग का समय है, चारों ओर अज्ञान का खूब पसारा हो रहा है। इधर उधर की बातों में मत भटको, भगवान की भक्ति में लग जाओ। समय का कुछ पता नहीं है कब इस संसार से चला जाना पड़े। भगवान के नाम के उच्चारण के बिना जो हमारा समय जाता है वो बहुत व्यर्थ जाता है। नाम जब कलयुग में सबसे बड़ी भगवान की भक्ति का रूप है, भगवान और भगवान की स्मृति ये भगवान के नाम से हो जाएगी। और चौथा सत्संग है। सत्संग तो सभी साधनों को प्राप्त करने की जगह है। ज्ञान योग वाले को भी सत्संग, भक्ति योग करने वाले को भी सत्संग, श्रेष्ठ पुरुषों का संग करो। महात्मा नहीं मिले तो साधक पुरुषों का ही संग करो। पर अपनी दृष्टि में अच्छे भगवान की तरफ चलने वाले लोगों उनका संग करो। मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। यत्न करने वालों में कोई कोई मुझे प्राप्त होते हैं, तो इस बात में घबराओ मत। कोई कोई में अपने को भी शामिल ही करो, क्योंकि अपने को टाल करके ये श्लोक नहीं कहा है, ये सबको मिला करके कहा है, ये तो सावधानी के लिए कहा है। साधन भजन करो तो अमानित्वम अदम्भित्वम का ध्यान रखो। हमारे में कहीं मान बड़ाई न आ जाए, दिखावटीपना न आ जाए, लोग हमको अच्छा माने, ओहो साहब ये तो बड़े अच्छे महात्मा है, नाम लेते हैं, ऐसा दिखावटीपन से मत करो। अंदर की ललक लगे, अंदर की इच्छा हो और फिर नाम जपो, देखो कितना जल्दी लाभ होता है। जैसे आयुर्वेद में घी को आयु बढ़ाने वाला कहा है, घी कर दिया यार, घी को आयु बढ़ाने वाला कहा है, ऐसे ही महात्मा लोग सत्संग को साधन बढ़ाने वाला मानते हैं। अतः सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, सत्संग जरूर करना चाहिए। सत्संग की बातें हृदय में जमती रहती है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतिम समय में भी मेरा स्मरण कर लोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। भगवान कहते हैं मनुष्य शरीर पाकर भी यदि इसका कल्याण नहीं हुआ तो मरते समय तो कैसे न कैसे किसी न किसी उपाय से नाम ले ही लो तो कल्याण निश्चित हो जाएगा। भगवान ने नियम बना दिया कि मरते समय कल्याण कर लेगा तो वो नाम ले लेगा तो कल्याण हो जाएगा। कितनी छूट दी है। अरे फांसी पर मरने वाले व्यक्ति को भी इच्छा पूर्ति की जिम्मेवारी गवर्नमेंट करती है। अतः भगवान ने भी जीवन यात्रा की समाप्ति के समय और विशेष कानून बना दिया कि मरते समय मेरा स्मरण कर ले तो मुझे प्राप्त होता है। कि इसमें संदेह मत करना। ये काम, ये बात क्यों कही कि लोग देखते हैं कि भाई हमारे कर्म तो अच्छे हुए नहीं, अब थोड़ा सा समय बचा है, इसमें नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा, जिंदगी तो हमारी पापों में चली गई, तो ये शंका हो जाती है। अपने कर्मों को देखकर, दूसरे के कर्मों को देखकर, अरे इसने जीवन भर पाप किया, अब नाम लेने से क्या होता है। भगवान कहते हैं इस विषय को आप जानते नहीं, मैं जानता हूं, इसलिए कोई शंका मत करो। मरते समय जो नाम लेता है वो मुझे प्राप्त होता है, आपको शंका करने की जरूरत नहीं है। साथ में भगवान ने एक कानून भी बनाया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद् भाव भावितः। मरते समय जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए मरता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है। अंतकाल में जिस चेतन की स्मृति हुई तब तो वो वैसा ही चेतन जीव हो जाएगा, पर यदि जड़ पदार्थ की स्मृति हो गई तो वो उस स्थान में चला आएगा। जैसे किसी को मरते समय में मकान की याद आए कि ओहो ये मकान मैंने बनाया था और मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे मकान की स्मृति हो जाएगी तो मकान में रहने वाली चींटी बनोगे हो या चूहा बनोगे या और कुछ उस मकान में रहने वाले प्राणी बनोगे। पर भगवान की स्मृति होगी तो भगवान की प्राप्ति होगी। कितनी ऊंची बात है। कहां तो मकान में चींटी चूहा आदि बनना और कहां भगवान की प्राप्ति होना। इसलिए तस्मात सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर। भगवान कहते हैं ये मन बुद्धि मेरे अर्पण कर दे। अर्पण करना क्या है? भगवान का ही चिंतन करना और भगवान का ही निश्चय करना। नियतात्म भी सगुण साकार, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार सब भगवान ही भगवान है। भगवान कृष्ण का ही ध्यान है। निराकार भी भगवान का ही कृष्ण का रूप और साकार है ये भी भगवान कृष्ण का स्वरूप। अधियज्ञ मैं ही हूं। अब नियतात्म पुरुषों को किस तरह जाना जाता है? अभ्यास योग युक्तेन है। चेतसा नान्य गामिना, परमेश्वर के ध्यान को अभ्यास के साथ जोड़ दो। अभ्यास करते रहो, परमेश्वर को प्राप्त हो जाओगे। अनन्य चेता सततम, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं वो उनके लिए मैं बड़ा सुलभ रहता हूं। सगुण निराकार और निर्गुण निराकार दोनों ही साधन कठिन है, परंतु सगुण साकार साधन सरल है। सगुण निराकार हो, हम लोग जो रामस नहीं संत है ना संप्रदाय में, ये कहने में तो निर्गुण निराकार आते हैं, परंतु सगुण निराकार और सगुण साकार को छोड़ा नहीं है। क्योंकि एक निर्गुण निराकार तत्व का ज्ञान हो गया तो साथ में और भी सब ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही सगुण साकार का जिसको ठीक अनुभव हो जाता है वो निर्गुण निराकार को न समझता हो ऐसी बात नहीं है। तो सगुण निराकार क्या होता है? निर्गुण निराकार तो ये है भाई, संसार के समान आकृति भगवान की नहीं है और वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से रहित है, इसलिए निर्गुण निराकार है। सगुण निराकार क्या होता है? सगुण निराकार होता है कि जिसकी आकृति तो नहीं है लेकिन विशेषताएं छिपी रहती है। जैसे अब इसकी क्या आकृति है? वह आवाज जो फेंकने की शक्ति है इसमें, उसकी कोई आकृति नहीं है, परंतु आवाज को ये फेंकता है, ऐसी दूर फेंकता है कि सबके कान में सुनाई दे। और ये यदि नहीं, और ये अब सुनाई दे रहा है। अब इसकी जो शक्ति है वो देखने में थोड़ी ही आती है, देखने में तो ये आता है। ऐसे ही दिखने में तो संसार आता है, पर इसके अंदर छिपी हुई जो भगवान की शक्ति है वो समझ में नहीं आती, तो वो सगुण निराकार हो गया। और सगुण साकार है जो भगवान स्वयं साक्षात चतुर्भुज द्विभुज आदि रूप से अवतार लेते हैं। अर्जुन की तरह अपने भी भगवान के साथ ही सोवे, भगवान के साथ ही खावे, भगवान के साथ ही रहे। जैसे मन कहीं रहता है और भोजन करते रहते हैं तो भाई मन को कहीं नहीं जाने दो, यही सोचो कि ओहो भगवान मेरे पास बैठे हुए भोजन कर रहे हैं। मन ही मन में भगवान से बातें करो और भगवान के साथ सो। सो तो ऐसा समझो कि मेरे पास भगवान सोए हुए हैं, मेरे पास भगवान बैठे हैं, ऐसा कहना। शरीर का निर्वाह प्रारब्ध के अनुसार होगा। शरीर को अपनी जगह और अपने आप को भगवान की जगह रख दो। निर्गुण निराकार और सगुण निराकार के दो कठिन साधन न बताकर सरल साधन बताया है। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्मन न विद्यते। भगवान की प्राप्ति है जीवन का अंतिम काम है, इससे ऊंचा कोई काम नहीं। ब्रह्मलोक तक के भी प्राणी वापिस घूम करके आते हैं तो इतना ऊंचा ब्रह्मलोक भी मिल गया तो लाभ क्या हुआ? पर ये कहा माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मुझे प्राप्त हो जाओगे तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। कितनी ऊंची स्थिति है। आप बताते हैं कि ब्रह्मलोक तक के वापिस क्यों आते हैं? काल करके अवधि वाले हैं वो, सब सावधिक है। सावधिक माने अवधि के अंदर बने हुए सहस्त्र युग पर्यंतम। ब्रह्मा के दिन का आदि है, सर्ग का आदि है। ब्रह्मा के दिन का अंत है, वो सर्ग का अंत है। ब्रह्मा भी तो एक शरीर ही तो है। संपूर्ण जीवों को ब्रह्मा जी बनाते हैं जैसे कुमार बनाता है। निमित्त और उपादान दोनों कारण ब्रह्मा है और ब्रह्मा का कारण परमात्मा है। तो जो मेरी प्राप्ति नहीं करता वो संसार के चक्र में पड़ा रहता है, इसलिए हरदम मेरी प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। गीता में यही सारभूत बात आई है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण यस्य श्रवणमात्रेण जन्म संसार बंधनात्